بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. اما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایک درود بھیجے محمد و آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذان محترم، شب عاشور سے صبح ظہور تک کے موضوع کے عنوان کے تحت جس گفتگو کا آغاز کیا ہے، اس میں کچھ تمہیدی گفتگو کے بعد ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی کہ ان حالات کا ذکر ہوا کہ جس میں عالم اسلام اس صبح کے بعد، جو رسول ختم مرتبت کی زحمتوں کی وجہ سے جو صبح جس عالم میں مدار ہوئی تھی، ان حالات کے تحت یہ دوبارہ شب تاریخ میں تبدیل ہو گئی، اور ان حالات میں امام علیہ السلام نے اپنا وظیفہ اور اپنی ذمہ داری یہ سمجھی کہ یہاں پر قیام کرنا ضروری ہے اس دین کو بچانے کے لیے، اور ان ہدایت کے چراغوں کو خاموش ہونے سے بچانے کے لیے قیام ضروری سمجھا، اور اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے، اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ایک قیام کیا. ان حالات کا کچھ تذکرہ ہوا، اور یہاں پر ان شاعر کا، ان سلوگنز کا بھی تذکرہ ہوا کہ امام علیہ السلام نے اپنے سفر میں، جو کہ مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا کے راستے میں اور پھر کربلا کے میدان میں، جن مطالب کو ذکر کیا، جن بیانات کو، اپنے خطبات کو ذکر کیا، اور اس سے اس پوری مہم کا، پوری تحریک کا ہمارے سامنے وہ پیغام پیش کیا کہ میں نے قیام کیوں کیا ہے، اس کی ضرورت کیا تھی، تاکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہو، ان کے لیے ایک نمونہ ہو، ایک اسوہ حسنہ ہو، کہ باقی لوگوں کے لیے بھی اگر ایسے حالات مہیا ہوں تو ان کے لیے ایک آئیڈیل کے طور پر اور ایک نمونے کے طور پر، ایک مثال کے طور پر یہ قیام موجود ہو، کہ جس کو دیکھ کر وہ ہمت حاصل کر سکیں کہ اتنی بڑی قربانی جب امام علیہ السلام اور ان کے گھر والے، جن میں چھوٹے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، یہ سب اصحاب مل کر جب ان تمام قربانیوں کو برداشت کر سکتے ہیں دین کی خاطر اور دین کے بچانے کی خاطر، تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ اگر کبھی دین پر وقت آئے اور اسے ہماری ضرورت ہو تو ہم اسی طرح سے قربانی دے سکیں. تو ان سلوگنز کو اور ان شاعر کو بیان کیا گیا. اس کا ہدف اور اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح سے اس آیت کے اندر بھی، جس کو سرنامہ کلام بنایا، یہاں پر بھی ذکر ہوا ہے خدا کی جماعت کا، اللہ کی پارٹی کا، ایک حزب اللہ کا ذکر ہوا ہے، اور ان کی خصوصیات کو بیان کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ حزب اللہ ہی فقط وہ پارٹی ہے، وہ حزب ہے کہ جو فلاح پانے والی ہے. اور یقیناً امام علیہ السلام اور ان کے اصحاب چونکہ اس آیت کا بہترین مصداق ہیں، اس لیے ये वो लोग हैं कि जो अल्लाह की पार्टी इस हिज़्बुल्लाह के अंदर यकीनन शामिल हैं, और दूसरे भी अगर चाहते हैं इस हिज़्बुल्लाह में शामिल होना तो उनको उन्हीं शायर की तरफ देखना होगा, उन्हीं पैगामात की तरफ देखना होगा, उन्हीं उसूलों की तरफ देखना होगा कि जो इस हिज़्ब में इमाम अलैहिस्सलाम ने और उनके असहाब ने बयान किया। बस इन स्लोगन्स को बयान करने का और इस पर तवज्जो करने का एक हदफ यह है कि हम इस पार्टी की, जो खुदा की जमात है, जो खुदा की हिज्ब है, इसके हम इस मैनिफेस्टो और मंशूर को अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हिज्ब की बात आती है, जब किसी पार्टी की बात आती है, तो आप देखते हैं कि फ़र्ज़ करें इस दुनिया के अंदर भी मुख्तलिफ हमारे पास ममालिक के अंदर मुख्तलिफ पार्टीज़ होती हैं, उनका एक मैनिफेस्टो और एक मंशूर होता है। अगर फ़र्ज़ करें कोई किसी एक ख़ास पार्टी के अंदर रुकनियत इख्तियार करता है और वो इलेक्शन में हिस्सा लेता है मसलन, और ये कुछ नुमाइंदे जो हैं उस पार्टी की तरफ से मुंतखब होकर पार्लियामेंट में चले जाते हैं, और फिर मुख्तलिफ उमूर के अंदर जहाँ पर उनको अपना एक मौक़िफ़ इख्तियार करना होता है तो वो पार्टी का मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। पार्टी की लीडरशिप, पार्टी की जो क़यादत है, उनको जो गाइडलाइंस देती है, उनको जो उसूल बताती है, उनको जो प्रोग्राम्स बताती है, ये उन्हीं के मुताबिक अपनी राय उस पार्लियामेंट के अंदर, उस मजलिस के अंदर उसका इजहार करते हैं। अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ अरसे पहले तक हमारे पास इस दुनिया के अंदर दो बड़े निज़ाम थे, एक कम्युनिस्ट निज़ाम था, एक मार्क्सीजी निज़ाम था, एक जो है सरमायदारा निज़ाम था। हमारे मुल्क के अंदर भी ऐसी जमातें थीं कि जो बाज़ उस मकतब को फॉलो करने वाली थीं, सोशलिस्ट निज़ाम इक्तिसाद को मसलन फॉलो करती थीं, बाज़ जो हैं वो सरमायदारा निज़ाम की तरफ माइल थीं। अब अगर एक शख्स जो है एक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है कि जो फ़र्ज़ करें कि सोशलिस्ट तर्ज़ इक्तिसाद को जो है उस सिस्टम को कबूल करती है, और इस पार्लियामेंट के अंदर, इस मजलिस के अंदर अगर कभी वोटिंग होती है और लोगों की राय ली जाती है, तो वो शख्स जो कि इस पार्टी से ताल्लुक़ रखता है वो अपनी पार्टी के गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, और जहाँ पर भी उसका जो मकतब उसको जो उसूल बता रहा है उसी के मुताबिक वो फैसला करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि मुल्क में बात आए कि क्या हमें इस मुल्क के इदारों को जो है वो नेशनलाइज कर लेना चाहिए, हुकूमत को इनको अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, नहीं, तो जो इस पार्टी का फॉलोअर होगा और जिसने इसी पार्टी के बुनियाद पर लोगों से राय जमा की है और उनकी राय के मुताबिक जो है वो पार्लियामेंट में आया है, क्या वो ये कर सकता है कि जब इस वोटिंग के अंदर जब वो शिरकत करे तो कहे कि नहीं, मैं यहाँ पर वोट इसके अगेंस्ट दूंगा और मैं इस प्राइवेटाइजेशन के हक में हूँ और मैं इस नेशनलाइजेशन के हक में नहीं हूँ? नहीं। अब जैसे ही वो ये काम करेगा, खुद ब खुद उसको जो है कहा जाएगा कि तुमने चूंकि पार्टी की गाइडलाइंस और उसकी जो, बल्कि जिसे कहा जाए रेड लाइंस, इसको फॉलो नहीं किया, उससे तुमने उबूर किया है, इसलिए उसको जो है वो शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, उसको से वो जो उसको तलब किया जाएगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। हर इंसान जो किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है उसको आज़ादी नहीं है कि जो चाहे वो करता रहे, नहीं, उसको उसी पार्टी को फॉलो करना है, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। तो क्या ये जो पार्टी है हिजबुल्ला, ये जो खुदा की पार्टी है, इसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, इसकी कोई रेड लाइंस नहीं है, इसकी कोई गाइडलाइंस नहीं है, इसमें आने वाला हर शख्स कह सकता है कि हाँ मैं हिजबुल्ला को फॉलो करने वाला भी हूँ, मैं हिजबुल्ला के अंदर शामिल हूँ, मैं इस पार्टी का एक रुकन हूँ, लेकिन जब मेरा दिल चाहेगा मैं ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करूँगा, जब मेरा दिल चाहेगा मैं फ़लान मौक़िफ़ इख्तियार करूँगा, क्या उससे सवाल नहीं किया जाएगा? क्या उसको वार्निंग देने के बाद एक मरहला ये नहीं आएगा कि उसको बाहर निकाल दिया जाए क्योंकि तुम्हारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है? ये कैसे हो सकता है कि हम किसी पार्टी का की बात करें और उसके अंदर फिर अफराद को, क्योंकि असल में पार्टी जब बनती है, हिज्ब जब बनती है, तो इसके अंदर ये हिज्ब इस शख्स को जो इसमें शामिल हो जाते हैं उनको दूसरों से मुमताज़ करती है, वइल्ला अगर इस पार्टी के अंदर हर तरह के अफराद आ जाएँ तो ये हिज्ब का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाएगा। हिज्ब यानी एक ख़ास किस्म के अफराद एक ख़ास नज़रिए के तहत एक जगह जमा होते हैं। अगर इनके दरमियान नज़रियात इसी तरह से, जिसे कहते हैं कि अंदर इसके अंदर इंटरमिंगलिंग होती रहे, उनका मिक्सिंग होती रहे, कभी कुछ है तो कभी कुछ है, तो किस तरह से आप उसको मुमताज़ करेंगे कि यह इस नज़रिए का हामिल है, ये इस पार्टी के अंदर है, उस पर, जिस तरह इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर है और बहुत सी जगहों पर, कि आप देखें मुख्तलिफ़ किस्म की पार्टीज़ के अंदर सिर्फ नाम का फ़र्क रह गया है, वरना नज़रिए के लिहाज से कोई फ़र्क नहीं। आप कहेंगे मसलन फ़लान पार्टी, आप उससे सवाल करें कि तुम्हारा इक्तिसादी लिहाज से क्या निज़ाम है, आपको वही जवाब देगा। वो दूसरी पार्टी से पूछे तुम्हारा क्या निज़ाम, वही एक ही चीज़ है। आप कहेंगे तुम्हारे पास कोई ख़ास फार्मूला है इस मुल्क को चलाने के लिए, नहीं, उससे पूछा तुम्हारे पास कोई खास? नहीं, किसी के पास कोई ऐसा नहीं कि बहुत कोई हमारे पास नजरियाती तौर पर डिविजन्स हुई हूँ। नहीं, ये डिविजन्स किस लिए हैं? मफादात की वजह से हैं कि मेरा, मैं चाहता हूँ हुकूमत करना, वो भी चाहते हैं हुकूमत करना, बस ये है डिवीज़न। या तो मुझे वोट ले लो ताकि मैं, यानी आवाम से कहा जाता है कि या तो आप हमको वोट दे दें ताकि हम अपने मफादात को हासिल कर सकें, और वो भी दूसरों, दूसरी जो पार्टी हुई यही कहती है कि आप हमें वोट दें ताकि हम अपने मफादात को हासिल कर सकें। आवाम के मफादात या मुल्क के मफादात या उसके, उसको तो कोई नहीं पूछता, यानी हकीकत में कोई नहीं पूछता, वरना जारी बात है कि नारों की हद तक तो उन्हीं की बात की जाती है आवाम की। लेकिन इनके आप प्रोग्राम्स देखें, इनके आप मुख्तलिफ चीज़ों को देखें, तो आपको इस तरह से कोई मकतबी लिहाज से कोई आइडियोलॉजिकल जो चीज़ आपको डिफरेंस नहीं, ऐसा नज़र नहीं आता। लेकिन खुदा की पार्टी जो है, जो हिजबुल्ला है, उसमें ऐसा नहीं है। हम कहें कि खुदा की पार्टी भी ऐसे, इसको कोई नज़रिया नहीं है, कोई इसके अंदर जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बस इसके भी जो है कुछ गाइडलाइंस हैं, वो कौन हमें बताएगा? वो यही दीन बताएगा, खुदा ही बताएगा। खुदा ने जो हमको जो दीन भेजा है, दरहकीकत क्या है, इस दुनिया के अंदर हमको दावत दी जा रही है कि तुम अगर अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरह गुजारना चाहते हो तो आओ इस पार्टी की रुकनियत इख्तियार करो। इसके मुकाबले में कौन सी पार्टी है? वो हिजबुश शैतान है। दो ही पार्टीज़ हैं खुदा की नज़र में, दो ही पार्टीज़ हैं, या हिजबुल्ला है या हिजबुश शैतान है। या हमारी पार्टी के अंदर आ जाओ या फिर तुम हिजबुश शैतान के अंदर हो। हमारी पार्टी माना चाहते हो, ठीक है, इस्तकबाल तुम्हारा, तुम्हें वेलकम किया जाएगा, लेकिन तुम्हें इन रूल्स एंड रेगुलेशंस की पाबंदी करनी पड़ेगी। कौन बताएगा उन रूल्स को? ज़ाहिर है जिसने वो पार्टी बनाई है, खुदा बताएगा, इस दीन के ज़रिए से बताएगा। खूब, ये निज़ाम भेजा गया, दीन को भेजा गया ताकि लोगों को इस जानब दावत दी जाए। अम्बिया का काम ये था कि लोगों को इस हिजबुल्ला की तरफ दावत दें और कहा कि तुम क्या करो, खुदा की इबादत करो और तागूत से इज्तनाब करो, यानी हमारी तरफ आ जाओ और वो जो मद्दे मुकाबिल जो पार्टी है, जो हिजबुश शैतान है, उससे इज्तनाब करो। जो अहम तरीन जो हदफ है अम्बिया को भेजे जाने का, उनकी बेसत का, वो यही है। खूब, जब लोग इस तरफ आ जाएंगे तो क्या करना होगा? जब तुमको, जब इज्तनाब करना है जब तागूत से, तो उनके सिस्टम से इज्तनाब करना होगा। तुम्हें ज़िंदगी गुजारनी है तो उसका सिस्टम हमसे लेना होगा, उनसे नहीं लेना होगा। हर एक एक चीज़ में तुमको हम बताएंगे वो सिस्टम क्या होगा, चाहे तुम्हारा सियासी निज़ाम हो, चाहे तुम्हारा इक्तिसादी निज़ाम हो, चाहे तुम्हारा तालीमी निज़ाम हो, चाहे तुम्हारा फरहंगी कल्चरल निज़ाम, कोई भी सिस्टम हो, वो हम तुमको बताएंगे, क्योंकि तुम हमारी पार्टी के मानने वाले। अगर नहीं मानना चाहते तो तुम हिजब शैतान जो है, जो उसके मद्दे मुकाबिल है, उसका भी अपना सिस्टम है, उसका अपना इक्तिसादी निज़ाम है, उसका अपना कल्चरल निज़ाम है, उसका अपना तालीमी निज़ाम है, उसका अपना सियासी निज़ाम है, ठीक है। तुम अगर इसको फॉलो नहीं करना चाहते तो तुम उसको फॉलो कर लो। लेकिन अगर हमारे निज़ाम में आओगे तो तुमको क्या करना होगा? इज्तनाब करना होगा उस तागूती निज़ाम से, जो भी खुदा के मुकाबले का जो निज़ाम है उसका इज्तनाब करना होगा। ये मैं नहीं कह सकता कि मैं इस पार्टी के अंदर भी रहूं लेकिन मैं फॉलो भी उस पार्टी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को करूं, उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसको फॉलो करूं। नहीं, अगर इस पार्टी में हो तो इसका वो मैनिफेस्टो क्या है? वही जो हमने कुछ दिनों से बयान कर रहे हैं कि जो रसूल खुदा और उससे पहले के अम्बिया और उसके बाद आने वाले जो हमारे पास आइम्मा हैं, उन्होंने सब ने इसी को बयान किया कि वो क्या निज़ाम है, वो क्या मैनिफेस्टो है, वो क्या मंशूर है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी दोबारा से इसको, इस पूरे सफ़र के अंदर इसको बहुत ज़्यादा बोल्ड करके, बहुत ज़्यादा वाज़े करके हमारे सामने बयान किया। इमाम अलैहिस्सलाम के इन कलिमात के अंदर ये चीज़ें ख़ास तौर पर इसलिए बोल्ड होकर सामने आई कि जिस तरह से हालात आपके सामने 2-3 दिन में बयान हुए, कि कोशिश की जा रही थी कि इन तमाम हकायक को पामाल कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, इनको मिटा दिया जाए। बस इमाम अलैहिस्सलाम ने बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं कि वजाहत के साथ, बहुत ज़्यादा इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि ये दीन इस वक्त अगर इन तमाम हकायक को सही तरह से नहीं बताया गया तो आइंदा ये नहीं पहुंच पाएगा, अगली नस्लों तक नहीं पहुंच पाएगा, इसका सिलसिला यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बाज़ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा, जो दीन की बुनियादी तरीन चीज़ें थी, उसको बहुत ज़्यादा बोल्ड करके हमारे सामने पेश किया। और इन शायर का कल आपके सामने वो तस्करा हुआ। अब ये वो शायर हैं, ये वो स्लोगन्स हैं जो क्या कर रही हैं, दरहकीकत इस मकतब, इस मकतब को जिसका इमाम मानने वाले हैं, जिसके इमाम इमाम हैं, जिस मकतब के इमाम लीडर हैं, वो अपने मकतब को बता रहे हैं कि मैं इस मकतब का मानने वाला हूँ। ये जो मकतब है, ये इन चंद सालों में किस चीज़ का शिकार हुआ है? ख़ास तौर पे इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद, फिर इमाम हसन अलैहिस्सलाम का जब ज़माना आता है और इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी जो है वो सुलह करने पे मजबूर होते हैं, और वो इस इन हालात के अंदर शिया जो आपको फॉलो कर रहे थे, या शिया कहें जो भी मुसलमान जो कि इन आइम्मा को फॉलो कर रहे थे और हकीकी मानों में फॉलो करना चाहते थे, उनकी इताअत करना चाहते थे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद बहुत कम होती चली जाती है। इमाम हसन अलैहि सलाम आते हैं, सुलह इसीलिए करते हैं ताकि ये जो कुछ थोड़े बहुत अफराद बच गए हैं इनको बचाया जाए, ताकि दोबारा से इस मकतब को, जिसे कहते हैं रीऑर्गेनाइज किया जाए, दोबारा से इसके अंदर जान डाली जाए। ये इमाम हसन अलैहि सलाम का कारनामा है, इमाम हसन अलैहि सलाम की दूरंदेशी है कि अगर आप ये काम अंजाम ना देते तो करबला में वो जो अफराद, जो खालिस अफराद थे जिन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ दिया और अपनी जानों को कुर्बान करके दीन को बचाया, वो अफराद, वो असहाब इमाम हुसैन को नसीब नहीं हो पाते। ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कारनामा है, जिसको हम ये मज़लूम इमाम, जिसकी किसकी इतने बड़े, जिसे कहते हैं कि कुर्बानी को, जिसके सब्र को हम लोग, जिसे कहते हैं इसकी कदरदानी नहीं की जाती, इमाम अलैहिस्सलाम का कारनामा है कि इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी दूरंदेशी से उस खामोशी के तहत दोबारा से, जैसे कहते हैं कि अंडरग्राउंड और बिल्कुल जो है खामोशी से उस अफराद को तैयार करना शुरू किया, उनकी तरबियत की। उन्हें कहाँ से अफराद आए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास, किनको किन किन्होंने तरबियत किया है? ये लोग तो इमाम अली अलैहिस्सलाम को छोड़ के चले गए थे, लोग तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ बेवफाई करके चले गए थे, दोबारा से कहाँ से अफराद आए? इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कारनामा है, उन्होंने इसको तैयार किया। जब इमाम हसन ने तैयार कर लिया और फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत का ज़माना आया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर इस चीज़ को, सिलसिले को कंटिन्यू रखा, अफराद की जो है तरबियत होती रही, और फिर वो वक्त आया करबला का, और करबला के वाक़े के बाद अहादीस में हमको मिलता है कि इर्तद नास, लोग जो है पलट गए, मगर ये चंद अफराद के नाम नहीं जाते हैं, 3 अफराद, 5 अफराद, यहाँ अपने उम्मे तवील हैं जिसमें खालिद खालिद काबुली हैं, इसी तरह से 2-3 अफराद के नाम हमको मिलते हैं, कि कहा कि इनके अलावा तमाम लोग पलट गए। किस चीज़ से पलट गए? हाँ, ये अहम चीज़ है, दीन से, तौहीद से नहीं पलट गए। ऐसा नहीं था कि इन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के वाक़े के बाद पूरा माशरा काफिर हो गया था, उन्होंने कहा कि नहीं, अब हम तौहीद को नहीं मानते, हम दोबारा से बुतों को अपने घरों में ले आएंगे, उनकी परस्तिश करेंगे, हम रसूल खुदा का इनकार करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लोग अब भी उस ज़माने के अंदर नमाज़ें पढ़ रहे थे। क्या नमाज़ें नहीं पढ़ते थे? क्या करबला के अंदर फ़ौज अशकिया नमाज़ नहीं पढ़ती थी? नमाज़ भी पढ़ती थी। तो नमाज़ें तो हो रही थी, दीनी क्या हज नहीं था? हज भी था, हज भी तातील नहीं हुआ था, ये तमाम चीज़ें चल रही थी। बस तौहीद उस माने में है कि जिस हम कहें कि एक नज़रिया था, और मसलन जो खुद मुसलमान कलमा पढ़ते थे, ये सब चल रहा था, इबादतें भी हो रही थी, सब कुछ था। फिर क्या ये इर्तिदाद था? ये पलटना किस चीज़ से था? पलटना इमामत से था, उस निज़ाम से था कि जिसको रसूल खुदा ने गदीर में इसीलिए बयान किया था कि ये निज़ाम है जो दीन की हकीकी मानों में हिफाजत कर सकता है, उसकी स्पिरिट की हिफाजत कर सकता है। जो दीन हमें लेने लेकर आया हूँ, और जो सिस्टम इस मुझसे पहले अंबिया लेकर आए और हम लेकर आए हैं, अगर हकीकी मानों में इस स्पिरिट की हिफाजत करनी है तो निज़ाम इमामत हिफाजत कर सकता है। निज़ाम इमामत के लिए 2 अहम तरीन, जिसे कहते हैं, जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को रखा गया। एक अहम तरीन जिम्मेदारी इस निज़ाम इमामत के लिए क्या थी? कि वो जो अहकाम है, जो दीन है, उसकी सही तबीन और उसको सही तरह से तफसीर और उसके वजाहत के साथ लोगों तक बताया जाएगा। ये अहम तरीन एक इमामत निज़ाम इमामत की जिम्मेदारी है कि सही सिस्टम जो है उसको लोगों तक बताया जाए, क्योंकि रसूल खुदा अपने ज़माने में अपने हद तक जो है चीज़ों को वाज़े कर सके, लेकिन वो 10 साल का अरसा जो आपने मदीना में हुकूमत के बाद गुजारा, वो काफ़ी नहीं था कि आइंदा आने वाली तमाम नस्लों तक के जितने भी मसाइल होंगे सबको आप बयान कर सकें। नहीं, इसीलिए निज़ाम इमामत को रखा कि मेरे बाद जब मसाइल पेश आएंगे उनके लिए मैं अपने बाद अपने ही जैसा एक इमाम, जिसको खुदा ने इसको मंसूब किया, उसको तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ, ये बाकी चीज़ों को तुम्हारे लिए तमजीन और उसकी तफसीर करता रहेगा। ये पहला मनसब। दूसरा मनसब, इस माशरे को एक सियासी रहनुमा की ज़रूरत है। कोई भी माशरा बगैर सियासी रहनुमा के नहीं चल सकता। फ़कत इल्मी लिहाज से, मैं कहें कि इसका जो है ये इल्मी लिहाज से ये इसका सरपरस्त है, लेकिन इसका सियासी लिहाज से कोई लीडर नहीं होगा, नहीं, वो माशरा नहीं चल सकता। आपको अगर इसको, उस माशरे को उसके खद्दोखाल के अंदर रखना है, उस मकतब को अगर उसके तमाम उन गाइड उस उन बाउंड्रीज़ के अंदर बाकी रखना है, तो उसके लिए कोई लीडर होना चाहिए जो उसको बताए कि हमको यहाँ पे किस तरफ आगे बढ़ना है, किस तरह से दुश्मन से मुकाबला करना है, किस तरह से अपनी हिफाजत करनी है, किस तरह से इसमें वो तमाम अहकाम जो है, वो सिस्टम जो है वो नाफिज होगा। तमाम चीज़ों को बताने के लिए एक सियासी लीडरशिप की ज़रूरत है। आप देखें, जितने भी हमारे पास इसी सदी के अंदर भी हमारे पास जितने भी निज़ाम आए, कम्युनिज्म का निज़ाम आया, कैपिटलिज्म का निज़ाम, क्या इनके पास फ़कत नज़रिया इल्मी था, इन्होंने हुकूमतें कायम नहीं की? नहीं, जब नज़रिया लेकर आते हैं तो उसके मुताबिक हुकूमत कायम करते हैं। जब निज़ाम में कम्युनिस्ट आया, उन मार्क्सिस्ट मार्क्सिस्ट निज़ाम आया, तो उसका मार्क्स ने क्या, उसका फ़कत ये नज़रिया था कि बस मैं तुमको नज़रिया दे रहा हूँ किताबों की हद तक, उसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर और कोर्स बुक्स के अंदर पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। नहीं, इसको उसका हदफ ये था कि उसको हुकूमत के अंदर लाया जाए और उसके मुताबिक हुकूमत की जाए, तब जाके ये मेरा नज़रिया फ़ायदेमंद होगा। या इसी तरह से सरमायादारान निज़ाम जो है, इसको फ़कत इकनॉमिक्स की किताबों की कोर्स बुक्स के लिए तो नहीं डिज़ाइन किया गया, बल्कि इसको डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि इसको नाफिज किया जाए। तो इस्लाम क्या इसी तरह से? इस्लाम ऐसा नहीं है? नहीं, इस्लाम भी ऐसा ही, कहा कि सिस्टम हम तुमको दे रहे हैं ये, इसके इल्मी मतालिब अपनी जगह, लेकिन इन इल्मी मतालिब को पियादा करना होगा, इसको लागू करना होगा ज़िंदगी के अंदर। वो कौन करेगा? वो हुकूमत करेगी, उसके लिए सियासी लीडरशिप चाहिए। तो इमामत के पास दो मनसब थे, एक ये एक इल्मी तौर पर तबीन करना, बताना मतालिब को, तफसीर और तबीन और तौज़ी देना, दूसरा एक सियासी लीडरशिप। अब इस इमामत का ये जो निज़ाम है, जो कॉन्सेप्ट है, इससे पलट गए लोग। लोगों ने कहा कि नहीं, मसला नहीं है, हम लोग जो हैं वो ये जो बाकी जो भी जो शख्स भी खलीफा है, जो शख्स भी इस मसले के खिलाफत पर बैठा है, ठीक है, वो भी नमाज तो पढ़ता है, वो भी तो यह काम चला ही रहा है, उसके पास भी एक सिस्टम बिलाकर है, ठीक है, बस अब काफ़ी हो गया, 50-60 साल से इसी तरह से हम लोग अपने खून बहा रहे हैं और सब कुछ हो रहा है और हम इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, बस अब ठीक है। अब कुछ लोग जो हैं वो उस लालच के अंदर आ गए, जो हुकाम की तरफ से बड़े लोगों को, खवास को जो दिया जाता था, बिक जाते हैं। कुछ लोग डर गए, कुछ लोगों ने कहा कि बस अब ज़िंदगी गुजारने के लिए जो है, हमें जिसे कहते हैं ना ज़िंदगी गुजारना, हमें भी तो ज़िंदगी गुजारनी है, अभी हमें भी तो बिलाखिर इस ज़िंदगी गुजारने के लिए अब बहुत हो गया, अब थक गए, अब बस काफ़ी है। तो ये लोग अब उन्होंने अपना हाथ उठा लिया कि इससे ज़्यादा अब नहीं हो सकता कि हम इस इन आइडियोलॉजीज़ के पीछे जाएँ और नज़रियात के पीछे जाएँ और आइडियल्स के पीछे जाएँ, बस अब इर्तद नास ये बाद आशुरा के बाद इल्ला सलासा, ये मतलब है कि लोग इस सिस्टम को अब दीगर, उन्होंने कहा कि काफ़ी है। अब ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का जो कारनामा है, हर इमाम को देखें अपने ज़माने में उसने अपने हिसाब से कितनी कुर्बानियाँ दी, कि अब इन आप सोचें कि कितना मुश्किल काम होगा उस ज़माने के अंदर, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उस बेदर्दी के साथ, उस बेकसी के आलम में शहीद कर दिया जाता है, और आलम इस्लाम जिसे कहते हैं एक शौक के अंदर आ जाता है। अब देखें कितना बड़ा वाक़या हो गया, उस नवासे रसूल को, उसकी जिसकी इतनी अजमत थी, उसको तमाम उसके बेहतरीन असाब के साथ, जिसमें बाज़ असाब रसूल भी थे, बच्चे भी थे, उनकी ख़वातीन के साथ उनको असीर बनाया गया, तमाम ये सब कुछ हुआ, एक शौक के अंदर आ जाता है। और ये शौक ये है, वो ये देखते हैं कि जब रसूल की औलाद को, नवासे रसूल को, कि जिसका इतना बड़ा मकाम था, उसको इस बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया जाता, तो हमारी तो कोई औकात ही नहीं, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब एक खौफ का एक आलम है जिसमें कहा कि कोई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई यानी जैसे कहते हैं इतना खौफ कि अब लोगों ने कहा कि नहीं, अब बस यहाँ पे काफ़ी है। इस आलम में अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास देखें कि कितना सख्त इनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन देखें उम्मीद और जैसे कहते हैं कि हिम्मत ना हारना, यहाँ पर हमको समझ में आता है कि जैसे बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया हो, कि सब कुछ ख़त्म है, इस इमारत को बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ढह गई हो और बिल्कुल गिर गई हो, ख़त्म हो गई हो, उसको कहा कि नहीं, इसी के अंदर जो हमको थोड़ी बहुत जो मसलन वो नज़र आ रही है, उसी से हम दोबारा से इस पूरी इमारत को दोबारा से कंस्ट्रक्ट करेंगे। कितना बड़ा काम है, लेकिन हिम्मत देखिए इमाम अलैहिस्सलाम की, कि इतनी ज़्यादा अजियतों के बाद और इतने तमाम जिसे कहते हैं गमों को सहने के बाद, एक शख्स जिसके घर के जो है 18 उसके भाइयों को शहीद कर दिया जाए, जिसके वालिद को इस तरह से शहीद कर दिया जाए, जिसके उसकी आंखों के सामने तमाम उसकी बीवियों को, उसकी ख़वातीन को इस तरह से असीर किया जाए, लेकिन उसके अंदर अब भी कितना करेज है, कहा कि नहीं, हमें ज़िम्मेदारी को अदा करना है, ये मसूलियत है, ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि नहीं हमारे पर ज़िम्मेदारी है और ज़िम्मेदारी जो है ख़त्म होने वाली नहीं है, इसका हमसे सवाल किया जाएगा और हम कर सकते हैं, और खुदा की तायीद अगर हमारे शामिल हाल हो तो ये बिल्कुल हो सकता है। दुरूद भेजे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। बस आशूर के बाद इमाम अलैहिस्सलाम के पास ये वो हालात हैं कि जिसके अंदर इमाम को दोबारा से इस पूरे निज़ाम को दोबारा से अपनी जगह पे खड़ा करना है। इमाम ने किस तरह से यानी हर वो चीज़ जिसको देख रहे हैं कि जो हर्डल है और जो रुकावट है दोबारा से इस मकतब की जिसे कहते हैं कि रीबिल्डिंग के अंदर, उसको जो इमाम अलैहिस्सलाम ने एक एक को देखा और उसको जो निशाना बनाया और उसको ख़त्म करने की कोशिश की। आप देखें कि सहीफ़ा सज्जादिया के अंदर जो आपकी दुआओं का मजमू है, इसके ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलाम ने इन मारिफ को जो कि फरामोश कर दिए गए थे, उसको दोबारा से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। एक उमूमी तबलीग है इमाम अलैहिस्सलाम की जो आप कर रहे हैं, और एक खसूसी तबलीग है, एक खसूसी काम है जिसे कहते हैं कि एक कैडर है जो बहुत ही ख़ास अफराद का, जिन पर ख़ास इमाम अलैहिस्सलाम काम करते हैं। उमूमी तौर पर माशा जो है वो उस पस्ती का शिकार हो चुका है, दोबारा से इसके अंदर जो है वो ऐश व इशरत और इन तमाम चीज़ों का नफूज हो चुका है, और लोग इस तरह से लग्जरियस लाइफ गुजारने के पर आमादा हैं और इस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम जोहद के ऊपर बहुत ज़्यादा ताकीद करते हैं, दुनिया की मजम्मत के अंदर आप देखें सहीफ़ा सज्जादिया के अंदर, दुआओं के अंदर जोहद के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ताकीद नज़र आएगी। खुदा से राबता जो है इंसान का जो ख़राब हो चुका है, लोग जो है मानवियत को फरामोश कर चुके हैं, दोबारा से खुदा को याद दिलाना, खुदा की तरफ इंसान को मायल करना, ये इन दुआओं के अंदर आपको कसरत से हमको मिलेगा। इसी तरह से जो है ईमान के ऊपर ताकीद, अखलाक के ऊपर ताकीद, इस दुनिया की जो है पस्ती के ऊपर ताकीद, हयात तैयबा की तरफ लोगों को दावत देना, कहा कि हयात ये नहीं है जब तुम देख रहे हो, हयात कुछ और, हयात है ज़िंदगी का असल माना कुछ और है, उसकी लज्जतें कुछ और है, उसकी तरफ आओ, हयात तैयबा की तरफ आओ। ज़ालिमीन की मजम्मत इसी इन्हीं दुआओं के अंदर हमको मिलती है। सिर्फ ये दुआएँ जो हैं, फ़कत ये नहीं कि इंसान इसके अंदर जो है वो अखलाकी नहीं, इन्हीं दुआओं के पैराए के अंदर इस तरह से अपने मैसेजेस को पहुँचाया कि ये दीन की जो हिफाजत है और वाकई इसको दोबारा से रीबिल्ड करने का जो काम है, इन्हीं दुआओं के ज़रिए से हो सके। ये इमाम बहुत तेज़ी से मैं गुजर रहा हूँ, तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इन हालात में इस काम को अंजाम देने की कोशिश की। जब लोग नज़दीक आ रहे हैं उनको, जो ख़ास इमाम अलैहिस्सलाम के जो सर्कल्स हैं जिनमें इमाम तरबियत करना चाह रहे हैं अफराद की, तो वहाँ पर किस चीज़, किस बुनियाद पर तरबियत है, हम तारीख़ में देखते हैं कि बाद में ये अफराद जो हैं, जो शुरू में जिनके नाम लिए गए कि मसलन ये तीन से चार चार पाँच अफराद बाकी बच गए थे, ये अफराद अब इतने ज़्यादा ताकतवर ताकतवर इस माना में कि इनके अंदर जुरत आ गई है कि बाकायदा अलनन जाते हैं मसाजिद के अंदर और वहाँ पे जाके खिताब करते हैं और कहते हैं कि हमारा और मतलब एक अपने बिल्कुल डिफरेंशिएट करते हैं कि हम एक हैं, हम लोग एक ख़ास मकतब के मानने वाले हैं और बाकी लोग हमसे जुदा हैं, यानी हम लोग आइडियोलॉजिकली फ़र्क कर गए हैं। नहीं, इतनी इनके अंदर जुरत आ गई थी, दोबारा से इस मकतब की बात शुरू हो गई। कौन सा मकतब? ये वो मकतब जो वही मकतब हुसैनी था, इससे पहले मकतब अलवी, और ये वो मकतब जिसको रसूल खुदा लेकर आए थे, जिसको हम बाद में इस्तेलाहन क्या कहते हैं, जब रसूल खुदा की रहलत के बाद जब एक कुछ लोग जुदा हो गए और आपने इमाम अली अलैहिस्सलाम का साथ देना शुरू किया, तो इस मकतब को इस्तेलाहन कहा जाने लगा तशय्यो। ये शिया हैं, शिया ने अली बिन तालिब, शिया का मतलब क्या है? शिया एक कोई ख़ास उसका माना नहीं है, यानी एक गुरु जो किसी की हिमायत करे, ठीक है? तो चूंकि ये खास गुरु जो कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की हिमायत करता था, तो कहते हैं ये शिया ने अली इब्ने अबी तालिब है। अब शिया किसी का भी हो सकता है, शिया मुआविया भी हो सकता है, शिया फिरौन भी हो सकता है, शिया कोई भी किसी का शिया हो सकता है। हम चूंकि अली इब्ने अबी तालिब के अल्हम्दुलिल्लाह मानने वालों में हमारा उनसे ताल्लुक है, तो हमको क्या कहा जाने लगा कि शिया अली इब्ने अबी तालिब है। बाद में ये सिलसिला गुजरता रहा और फिर आशुरा के बाद ये बिल्कुल सिलसिला, यानी इतना ज़्यादा इनको दबा दिया गया कि अफराद कुछ ही रह गए। बाद में इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की दोबारा कोशिशों के नतीजे में इनके अंदर दोबारा जुर्रत आई और अब ये अलनन मस्जिदों में जाके जो है वो ऐलान करते हैं कि हमारा अपना तशख्स है, हमारी हुवियत है। वो क्या हुवियत है, शनाख्त क्या है, हमारी आइडेंटिटी क्या है, इसको बयान करना मकसद है। वो क्या है? दरहकीकत वही चीज़ है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने उन स्लोगन्स के अंदर बयान किया था, वो जो मैनिफेस्टो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देकर गए, जिसको कल आपकी खिदमत में तफसील से बयान किया कि ये सारा सब कुछ जो है, सब कुछ जो है खुदा की उबूदियत के साया में। सबसे अहम तरीन कानून इसका क्या है कि हम खुदा की उबूदियत को मानते हैं, खुदा को अपना रब मानते हैं, उसी के कानून के तहत हम ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। और फिर वहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम उन स्लोगन्स के अंदर इमाम की भी बात बताते हैं कि इमाम कौन होगा और हम तुमसे किस तरह की ज़िंदगी चाहते हैं, इसको भी बयान किया। जिसके अंदर अहम तरीन चीज़ क्या थी कि हम और हमारे मानने वाले कभी भी जिल्लत के आगे अपना सर नहीं झुकाएंगे, नहीं, जिल्लत को कबूल नहीं करेंगे। हयात अमिन्नत जिल्ला, ये इमाम अलैहिस्सलाम के अहम तरीन स्लोगन्स में। हम कभी जालिम के हाथ पर बैयत नहीं करेंगे, ये इमाम अलैहिस्सलाम के बेहतरीन जो अहम तरीन स्लोगन्स के अंदर से था। इसी तरह से लोगों के, मजलूमों की बात की कि इमाम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हमारा क़याम इसीलिए कि हम चाहते हैं कि मजलूमों की जो है उनकी हिमायत की जाए, हमारा क़याम इसलिए है कि हम चाहते हैं कि इस माशरे के अंदर हम दिखा सकें उस असलाह को, हम दिखा सकें मालम दीन को। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस मकतब की अहम तरीन चीज़ों के साथ। अब ये मकतब जब बनता है, अब जिस आप बाज़ अफराद यहाँ पे देर से तशरीफ़ लाए, तो जब हम किसी मकतब की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात करते हैं, जिस तरह से उस आयत के अंदर भी, आयत के अंदर भी इसको सरनामा कलाम करार दिया गया, उसमें किस चीज़ की बात है? हिज़्बुल्लाह की बात है, अल्लाह की पार्टी की। इस मकतब की को इमाम अलैहिस्सलाम इस तरह से डिफ़ाइन कर रहे हैं कि इसका अहम तरीन जो स्लोगन है खुदा, ये निज़ाम, इस तमाम इसके अकदार और इसको चलाने वाला जो सिस्टम है वो निज़ाम इमामत है। इस ये हमारा मकतब है, ये तशय्यो है, ये शियत है। इसके ऊपर हमने इमाम अलैहिस्सलाम अब लोगों को दावत दे रहे हैं, दावत कबूल करना चाहते हो, बैत करना चाहते हो, फबिहा आओ इस बात पर हमारी बैत करो। बैत किस चीज़ के ऊपर हो रही है? इमाम अलैहिस्सलाम की इन दोनों मतलब के ऊपर कि हम आपको एक इलाही पेशवा भी मानते हैं कि जो रसूल के बाद दीन को इसी तरह से पहुंचाएगा जिस तरह से वो दीन आया था, और साथ में हम आपको सियासी पेशवा भी मानते हैं, सियासी लीडर भी मानते हैं कि आपको हक है कि आप इस माशरे के अंदर निज़ाम को कायम करें। इन दोनों बातों के ऊपर आप एक चीज़ को ले लें दूसरे को ना ले, नहीं हो सकता, नहीं, कंप्लीट सिस्टम को आपको लेना होगा। कबूल करते हो तो ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम शिया है, इस चीज़ को कबूल करते हैं हम। अब आप देखें कि इस 1400 साल गुजरने के बाद लगता है कि हम अपनी शनाख्त खो बैठे हैं। जरा देखें कि शिया है क्या, शिया का मतलब क्या था, शिया की आइडेंटिटी है क्या। अगर कोई कौम अपनी अपनी आइडेंटिटी को भूल जाए, अपनी शनाख्त ही को भूल जाए, तो उससे फिर आप किसी चीज़ की तवक्को नहीं कर सकते, फिर वो ख़त्म है उसका मामला, फिर उससे मायूस हो जाना चाहिए। कि जिसको आप यही ना मालूम हो कि मैं हूँ कौन, मेरा हदफ क्या है, ये जो हमको बातें, हमको जो है चीज़ें नज़र आती हैं, हम कहते हैं कि मजालिस के अंदर जो है सियासी बातें ना हो, ये क्या है, ये तनाकुज़ है, ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये पैराडॉक्स है। एक तरफ से इंसान कहे कि मैं शिया हूँ, एक तरफ से कहा जाए कि सियासत की बातें आप ना करें, ये पैराडॉक्स है, ये हो नहीं सकता। शियत का मतलब ही ये है, शियत का मतलब ही है कि हम निज़ाम इमामत को मानने वाले हैं। निज़ाम इमामत क्या, हम जो इतने फ़ज़ाइल बयान करते हैं, हम जो इतनी ज़्यादा जो है वो अली अलैहिस्सलाम का जो है उनकी मोहब्बत के अंदर जो है फ़ज़ाइल को बयान करते हैं, उसका हदफ क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग जो है वो वाह वाह करें, चाह चाह करें और ख़त्म हो जाए? नहीं, हम लोग साबित ये करना चाहते हैं कि हम जिस सिस्टम के मानने वाले हैं, उस सिस्टम, उस निज़ाम इमामत के हकदार अली अली अली, अली अपने अबी तालिब की ज़ात है, ये फ़ज़ाइल उनके लिए हैं और ये तमाम निज़ाम इमामत उनके लिए जो है वो सचता है, उनको जचता है, उन्हीं के वही उनके सजावार हैं। वरना अगर ये हदफ ना हो तो फिर क्या फ़ायदा इनके फ़ज़ाइल को बयान करने का। हदफ यही तो था कि हम कहें कि ये हकदार थे, और क्यों हकदार हैं, देखें इनकी फजीलतें, ये इन सबसे अफजल हैं, बस इनके पास आना चाहिए निज़ाम, वरना फिर क्यों हम फजाइल बयान करें। बस हम फजाइल बयान करते वक्त भी हमको मालूम नहीं होता कि हम फजाइल बयान कर क्यों रहे हैं, हदफ क्या है इसका, इस बात मकतब तशय्यो है, ये मकतब हक हक के ऊपर है, इस दीन इस्लाम की जो सही पिक्चर है वो ये मकतब तशय्यो देता है, ये इसका हदफ है। अगर हम इसके अंदर से उसकी असल जो रूह है वही निकाल दें, निज़ाम इमामत में से हम एक पहलू का रखें कि वो उसकी जो स्पिरिचुअलिटी है, उसकी जो मानवियत है, उसको रखें, और हम कहें कि ये अल्लाह की तरफ से जो है वो एक शख्स है जिसको नस्ब किया गया है, इसको मान लें, हम उनकी जो है मुख्तलिफ इल्मी फ़ज़ाइल को, उनकी इबादियात के अंदर, उनके अखलाकियात के अंदर फ़ज़ाइल को मान लें, लेकिन इस सिस्टम को जो जब नाफिस करने की बात आए, जब सियासी लीडरशिप की बात आए, तो वहाँ पर हम जो है वो सोचने पर सोचें कि भाई ये है कि नहीं। अच्छा, अगर है भी तो वो जो इमाम इमाम ज़मान जब आएंगे तो उनके लिए होगा, तो इस निज़ाम गैबत के अंदर क्या होगा, इस निज़ाम गैबत के अंदर ज़रूरत नहीं है क्या इस मकतब को, इस खुदा की पार्टी को चलाने के लिए, कि उस निज़ाम की ज़रूरत नहीं है, खूब है या नहीं है, सवाल किससे हम करेंगे, चूंकि हम अपना पेशवा, अपना लीडर इमाम को मानते हैं, सवाल भी इमाम से करेंगे, इमाम से जाकर सवाल करेंगे कि आप खुद बताएं कि क्या गैबत है कुबरा के अंदर, क्या ज़रूरत नहीं है निज़ाम तशय्यो को चलाने के लिए, इमाम कहेंगे क्यों नहीं, हमने तुम्हारे लिए जो है वो इन अफराद को करार दिया, इनकी क्वालिटीज़ हम तुम्हारे बता के जाते हैं कि ये अफराद हैं, ज़रूरत है हर इन मसाइल के अंदर, तुम्हें ज़रूरत है कि इनकी तरफ जो है देखो, इनकी तरफ रुजू करो, इनसे पूछो कि क्या करना है, लीडरशिप तुम्हारे इस माशरे की इन अफराद के पास होगी, कि जो आलिम किताब होंगे, जिनके पास सुन्नत का इल्म होगा, जिनके पास, जिसे हम आसान अल्फाज में इज्तहाद कहते हैं, मुज्तहिद कहते हैं, कि हमने इनको अपना नायब बनाया है और ये तुम्हें गाइड करेंगे, ये तुम्हें किस चीज़ में गाइड करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो तहारत और निजासत के मामले में गाइड करेंगे। और अगर जब मैं सवाल करूंगा कि इस वक्त जो है हमारा इस्लामी माशरा जो है, मुस्लिम माशरा जो है, इन तमाम मसाइल के अंदर घिरा हुआ है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो वो कहेंगे कि नहीं, हमका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं, नहीं हम तुम्हारे लिए इन अफराद को छोड़ के जा रहे हैं, इनको हम अपॉइंट कर रहे हैं अपने नायब के तौर पर, बस जो काम उस इमाम का था वही काम इस नायब का भी है, उनकी गैबत में वही काम इस नायब को अंजाम देना है। हाँ, ये ज़रूरत है, ज़रूर है कि वो मासूम हैं, जिस तरह से वो अप्लाई करेंगे, जिस तरह से वो कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता है, गैर मासूम है, लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि चूंकि अब गैबत का ज़माना आ गया तो तमाम अहकाम की तातील कर दी जाए, अब जो है ज़रूरत नहीं है इस इस्लामी माशरे को लीडरशिप की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर अफरा तफरी हो जाए, इसके अंदर दुश्मन जो कुछ भी करना चाहे, इसकी फरहंग को, इसकी सकावत को ख़राब करके रख दे, हमें इससे कोई गरज नहीं है, इस अभी 1400 साल हो चुके हैं, या हम नहीं बल्कि मसलन 1150 साल हो चुके हैं, मालूम नहीं कि इमाम अलैहिस्सलाम कब तशरीफ़ लाते हैं, जितना भी अरसा होता चला जाए, हमें इससे कोई गरज ना हो, दीन के पर जो कुछ भी जो है वो आफत आती रहे, बला आता रहे, कोई मसला नहीं है, ये नहीं हो सकता, इंसान की अक्ल इसको कबूल नहीं कर सकती कि जिस चीज़ के लिए इमाम अलैहिस्सलाम ने, आइमा अलैहिस्सलाम ने इतनी कुर्बानियाँ दी हों, इतना सब कुछ अपना जो है कुर्बान कर दिया हो, हम कहें कि नहीं, अब इस वक्त इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है, वो इमाम आएंगे खुद जो है वो सब कर लेंगे, हम लोग अभी सुकून से बैठते, ये नहीं, ये मकतब तशय्यो की रूह के ख़िलाफ़ है, इसकी जिसे कहते हैं गाइडलाइंस के, इसकी इसके ख़िलाफ़ है, ये हो नहीं सकता। जब एक मकतब के अंदर हम आते हैं, जब किसी पार्टी के अंदर आते हैं, तो उस पार्टी की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना होता है, आप ये नहीं कह सकते कि हम इस पार्टी के माने, हम इसके अंदर भी हों, इसके अंदर रुकनियत भी इख्तियार करें, लेकिन जब वोटिंग का मामला है तो हम वोट किसी और को दें, आपको फ़ौरन जो है इस पार्टी से खराज कर दिया जाएगा, जब पार्टी में आए हो तो इस पार्टी की लीडरशिप की बात मानो, अगर पार्टी में नहीं रहना है आप जा सकते हो। हम कहें कि नहीं, हम मकतब तशैयुत शीयत की पार्टी के अंदर भी आएंगे, लेकिन जब वोट की बात आएगी कि क्या करना है किस पॉलिसी को, तो हम कहेंगे नहीं, हम लोग सेकुलरिज्म के कायल हैं, हम लोग दीन के और सियासत की जुदाई के कायल हैं। ये नहीं हो सकता। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने शीयत को समझा ही नहीं, क्योंकि हमने तशैयों को समझा ही नहीं। असल इसकी सबसे अहम तरीन जो चीज़ है, जिस तशैयों को जो तशैयों बना शीयत बनाती है, इस मकतब को जो मकतब ये बनाती है, ये इसका दीन और सियासत का के अंदर जो है, जिसे कहते हैं कि अदम जुदाई है। व इल्ला बाकी लोगों का ये नारा था। असल सकीफा की बुनियाद किस चीज़ के ऊपर थी? हम जिस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो बातें सुनाते हैं, सकीफा के अंदर ये हो गया वो हो गया, और अमलन हम भी सकीफा के मानने वाले हो जाएं। सकीफा के अंदर क्या हुआ था? कहा कि ठीक है, किसी ने ये तो इनकार नहीं किया था अली अलैहिस्सलाम की जो है वो इल्म के अंदर कम है, नहीं, कहा कि ठीक है आप इल्म के अंदर हो, मानवियत के अंदर हो, तमाम अली की मकामा फजाइल अपनी जगह पर, लेकिन हुकूमत ये नहीं करेंगे। सकीफा इसके अलावा तो कोई और चीज़ नहीं है। यानी आपने निज़ाम इमामत में से जो सियासी जो उनसुर था उसको निकाल लिया, कहा कि ठीक है आप अपनी जगह पर सब कुछ, लेकिन जब हुकूमत की बात आएगी, सियासत की बात आएगी, तो आपसे, हमें आपसे कोई गरज नहीं है। यानी हमको अपनी ज़िंदगी गुजारने के अंदर दीन का रोल नहीं चाहिए, हम अपने अक्ल के मुताबिक जो करना चाहेंगे करेंगे। अब ये सकीफा यही है। अब हम इमामत इमामत करते रहें, अपने खुद भी याद करते रहें, इमामों के नाम याद करते रहें, अपने बच्चों को याद कराते रहें, लेकिन अमल में सकीफा के मानने वाले हों, अब ये पैराडॉक्स नहीं है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों हम इस मतलब के ऊपर, इस आयरन, इसको गौर नहीं करते कि हमारी शनाख्त है क्या, इसको समझे कि समझने की कोशिश करें। और जिन लोगों को जिनको समझ में आई ये बात, वो हमारे दुश्मन है। हमारे दुश्मनों को शीयत हमसे ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, शियों को शीयत अभी समझ में नहीं आई, लेकिन जो दुश्मन है उसको पता है कि शीयत क्या है। अगर इसके अंदर ये रूह जो शीयत की है अगर दोबारा से बेदार हो जाए, तो वही होगा कि जो इमाम खुमैनी ने मसलन जो है चंद साल पहले मुझे इनकलाब लेकर आया कि पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, तो उनका कि नहीं, इस ये हमारे लिए खतरा है। बस शियत का नाम मसला नहीं है, नाम रहे, लेकिन इसके अंदर जो रूह है, जो स्पिरिट है, उसको निकाल लो। तो क्या कर किया जाएगा? मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए जाएंगे, हमको तक डिवाइड करने की कोशिश की जाएगी, मुख्तलिफ जो है वो चीज़ों को लाया जाएगा, मुख्तलिफ अजीब व गरीब चीज़ों को जो है हमारे मजहब के अंदर, ताकि लोग इन्हीं उलझनों में गिरफ्तार रहें और इन्हीं के अंदर बहस मुबाइसे के अंदर अपना वक्त गुजारते रहें, वो असल जो चीज़ है उसकी तरफ तवज्जो ना करें। अब देखें कि मसलन जब ये दीन आता है, छोटे से एक कैनवस के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है, कितना अजीज़ होता है, बजाय इसके कि हम जो है इस पर फ़ख्र करें कि हाँ हम लोग वो हैं, खुशनसीब लोग हैं कि जिन्होंने 1400 साल बाद दोबारा से किसी शख्स को देखा कि जो वाकयन जिसने इस निज़ाम को दोबारा से इहया करने की कोशिश की, और एक छोटे कैनवस के ऊपर ही क्यों ना सही, लेकिन जहूर का दोबारा से ज़मीना फराहम करने की कोशिश की, और उसमें हम फ़ख्र करें और इफ्तिखार करें और बताएं कि देखो इसको इस तरह, और इसकी हिमायत करें जिस हद तक हो सकती है हमसे हिमायत, और हिमायत करने की कोशिश करें, बजाय इसके कि हम ये काम करें, हम लोग उसी के मुखालफत में, उसकी फ़कत जो नकायस हैं, बिलाखिर इसमें तो कोई शक नहीं है कि गैर मासूम हैं, जब हुकूमत करेंगे नकायस भी होंगे। जब मासूम हुकूमत कर रहा है तो वहाँ पर इतने मसाइल थे, मगर इमाम अली अलैहिस्सलाम की जिंदगी की हुकूमत के अंदर मसाइल नहीं थे, नहीं मसाइल थे, क्योंकि तदरीजन ये काम होता है, आहिस्ता वक्त चाहिए होता है एक चीज़, इस एक निज़ाम को इस्टेब्लिश होने के लिए। तो क्या जब गैर मासूम हुकूमत करेगा तो उसमें मसाइल नहीं होंगे? मसाइल तो होंगे, हम फकत उन मसाइल को, नकायस को ले लें, उसकी जो अच्छाइयाँ हैं उसको ना लें, उससे उसको सरफ नज़र करते रहें, तो कितना बड़ा जुल्म है। इस काम से सवाल नहीं होगा, इस ये हमारी मसूलियत नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसको इस इंसान समझने की कोशिश करें, देखें कितना कितनी इज्जत इंसान को, अगर आप देखें कि इस वक्त दुनिया के अंदर जो हालात हैं, जो तब्दील हो रहे हैं, और खुदा करे कि इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता वाकई आहिस्ता नहीं बल्कि तेज़ी के साथ जो है इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर तक मुंतही हों, और वाकई ये एक ज़मीना जो फराम हुआ है, देखें किस हद तक हालात चेंज हो गए हैं। 40 साल पहले जब इनकलाब आया था, क्या हालात इस तरह से थे दुनिया के? इस वक्त शीयत को कितनी ज़्यादा जो है ताकत मिली है, अलबत्त हम शीयत की बात नहीं करते, इस्लाम वाकई मुसलमानों को, अगर कोई इंसान जो है इज्जत की ज़िंदगी गुजारना चाहता है, ये फ़लस्तीनी जो है ये तो शिया नहीं है, लेकिन इन्होंने भी जो है इनकलाब इस्लामी से कितनी इज्जत पाई है। आज आप देखें कि किस तरह से इसराइल जो है कमज़ोर होकर रह गया। 40 साल पहले इसी इसराइल का कहीं जहाँ पे अगर सिफारत खाना था तो यही तेहरान था, यहाँ पर इनका सिफारत खाना, ये लोग यहाँ पे ईरान जो है क्या था उनका, जो जिससे मंतके के अंदर जो है रखवाला था या मसलन आप कहें चौकीदार था, वो रोल अदा करता था। लेकिन जब इनकलाब आया तो किस तरह से हालात तब्दील हुए, सिर्फ एक मुल्क के अंदर सही निज़ाम अगर आ जाए, उस निज़ाम इमामत की एक झलक आ जाए, एक विलायत फकीह इसके अंदर नाफिज हो गई, तो देखें न फकत अपने मुल्क के अंदर बल्कि अतराफ के अंदर जो असरात इसके हुए। आप देखें आज यमन के अंदर, यमन सुन्नी मुल्क है लेकिन वहाँ पे किस तरह से उन्होंने इनकलाब से इंस्पिरेशन ली, उसके मुता इसके बाद जो है कितनी इज्जत उनको मिली, कितने अजीज हुए। 8 साल की जंग के बाद, 7 साल की जंग के बाद दुश्मन मजबूर हो गया, वो नहीं कुछ नहीं इनको हरा सका, वो कैसे हुआ, इसी इनकलाब से इंस्पिरेशन ली। आप लुबनान को देखें, आप फलस्तीन को देखें, शाम को देखें, शाम जिसके अंदर जो है वो इस हद तक जो है वो दुश्मन ने ख़त्म कर दिया था, यानी चंद 100 मीटर का फासला था कि वो निज़ाम पूरा ख़त्म हो जाता, हुकूमत ख़त्म हो जाती, को किसने, ये कैसे हुआ, कोई एक सिस्टम है, कोई निज़ाम है जो पुष्पनाही कर रहा है, पूरे आलम इस्लाम के अंदर कोशिश है कि ये सही मैसेज जाए, लोग इस बुनियाद पर आएँ। ये नहीं कहता कि तुम सब लोग शिया हो जाओ, कभी इनकलाब इस्लामी ने ये नारा तो नहीं लगाया कि हम चाहते हैं कि पूरा आलम इस्लाम शिया हो जाए, नहीं कभी ये बात नहीं की, मगर आज तक किसी फलस्तीनी ग्रुप से कहा कि तुम लोग शिया हो गए तो हमको तुमको असलाह देंगे, नहीं, ये वही सुन्नी ग्रुप हैं। यमन के अंदर कभी किसी को कहा कि तुम शिया हो, नहीं, नारे कौन से नारे हैं, वही इमाम हुसैन के नारे, इमाम हुसैन ने करबला के अंदर कौन सा शिया का नारा लगाया कि सिर्फ शिया मेरे साथ आएंगे, ना, कहा इज्जत का नारा, कहा कि हम जिल्लत को कबूल नहीं करते, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, से क्या फ़र्क पड़ता है, हम हुर्रियत की बात करते हैं, चाहे तुम शिया हो चाहे सुन्नी हो, चाहे असल ना चाहे शिया ना सुन्नी कुछ भी ना हो, कि इंसान बन के हुर बन के भी आना चाहते हो तो हम तुमको कबूल करेंगे, हुर बनो इस दुनिया के अंदर, इज्जत। आप देखें हत्ता गैर मुस्लिम माशरों के अंदर भी इस इनकलाब की जहर इसका असरात हैं, हत्ता गैर मुस्लिम माशरों के अंदर इमाम खुमैनी को एक इस तरह के सिंबल के तौर पे देखते हैं कि जिन्होंने कयाम के जुल्म के खिलाफ, लेकिन हम अपने ही मकतब को, अपने ही इतनी बड़ा हमारे पास जो सरमाया है जिस पर जिससे हमारा जो है सर बुलंद होना चाहिए, हमें फख्र करना चाहिए कि हम इस मकतब के मानने वाले हैं कि जिसका इमाम इस तरह से हमें दावत देता है हक पे आने की, हमें दावत देता है इज्जत की, हमें दावत देता है इन तमाम चीज़ों की हुर्रियत की दावत देता है, हम इस चीज़ को समझ ना पाए और आपस के इन फजूल किस्म के इख्तलाफात के अंदर, जिस जो इख्तलाफात फ़कत और फ़कत हवाओ हविस इंसान की ख्वाहिशात नफसानी की वजह से हैं, यानी इस वक्त जो हमारी कौम भी मुब्तला है मुश्किलात में, हमारी अपनी ही ख्वाहिशात नफसानी का नतीजा है, वरना निज़ाम के अंदर तो कोई कमी नहीं है, निज़ाम तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक ग्रुप आता है कहता है मेरी मैं जिस तरह से चाह रहा हूँ, वो कह रहा है मैं जिस तरह से चाहूँ, मेरा पोस्टर लग जाए, वो कह रहा है मेरा नाम हो जाए, सही। तो ये जब किसी भी कौम के अंदर देखें, हम सुन्नत इलाही जो होती है, सुन्नत इलाही है वो हमेशा जो है वो उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती, सुन्नत इलाही है कि अगर तुम लोगों के दरमियान इख्तलाफ होगा, इफ्तराक होगा, कमज़ोर पड़ोगे और शिकस्त खा जाओगे, अब चाहे तुम्हारा नाम शिया हो, चाहे तुम्हारा नाम सुन्नी हो, चाहे तुम्हारा नाम कुछ भी, हमें इससे ये सुन्नत इलाही है, तफरीका करोगे, लड़ोगे, नहीं समझोगे, अपने दुश्मन वाहिद को, दुश्मन जिसे कहते हैं कि जो तुम्हारा मुश्तरक दुश्मन है उसकी पहचान नहीं करोगे, ठीक है ये तुम्हारा अंजाम होगा, जिल्लत तुम्हारे लिए लिखी जाएगी। आप देखें क्यों हमारा हाल इस तरह से, अब देखें वो कैंप लगा के बैठे हैं मिसिंग पर्सन्स का, कितने साल हो गए, बाज़ अफराद को जो है वो साला साल हो गए, क्यों नहीं निकल रहा है कि हमारी कौम के अंदर जो जिसके अंदर जो जिसकी 20% आबादी है, मसलन 4-5 करोड़ की आबादी है, उसके अंदर इतनी आवाज़ नहीं है कि उनको बाहर निकलवा सके, कोई सुनता ही नहीं हमारी बात, क्यों क्यों सुनेगा, क्यों सुनेगा कोई, आप हैं कौन, आपके अंदर ताकत क्या है, जब हमारे पास हम लोग इस तरह से आपस में लड़ते रहेंगे, जब हम हमारे पास एक प्लेटफॉर्म पे हम जमा नहीं हो पाएंगे, हम अपने कॉमन इश्यूज के अंदर भी अपने एक कॉमन बात नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कह रहा कि कोई सारी जो है तंजीम खत्म हो जाए फकत एक, नहीं, हर तंजीम अपनी जगह अपना काम करे, लेकिन एक ही मिशन के लिए उसका काम हो, सब लोग खुदा की तरफ ले जाएं, सब लोग इस निज़ाम इमामत की तरफ, दीन के सही दीन की तरफ, लोगों की तरफ ले जाएं, तो सही है आप 10 तंजीमें बनाएं, 20 तंजीमें बनाएं, लेकिन आपस में इख्तलाफ क्यों, जब सब तुम सब के सब अली इब्न अबी तालिब के मानने वाले हो, जब सब के सब को आशूरा ने वो मैनिफेस्टो दिया है, तो पर इख्तलाफ किस बात का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि रैली के अंदर मेरा पोस्टर लगेगा, वो कहेगा मेरा पोस्टर लगेगा, हम लोग मिल नहीं सकते, हम लोग इख्तलाफ करें, एक दूसरे को ये जब कौम के हालात होंगे तो आप यकीन रखें हमारे अफराद न फकत ये जो हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं, जो किसी भी वजह से जिनको उठा लिया गया है, ना ये छूटेंगे बल्कि मजीद भी पकड़े जाएंगे। क्यों ना पकड़े? दुश्मन दुश्मन तो आपके साथ दुश्मनी करेगा, उसको तो आपके साथ हमदर्दी नहीं है। वो क्यों, किस बुनियाद पर आपसे जो है, आपके पास क्या है क्या आप बारगेन कर सकें, क्या आपके पास क्या चीज़ है? और रोज़ बरोज़ हमारी जो हालत इस तरह से, इसको इस चीज़ को जो है, जिसे कहते हैं कि आवाम का भी एक जिम्मेदारी है कि इन मतालिब को ज़्यादा से ज़्यादा इंतशार करे, फैलाए, एहतजाज करे अपने ही लोगों से कि तुम लोग जो कि जिम्मेदारान कौम हो क्या कर रहे हो। जिम्मेदारी है कि इंसान जो है ज़रा ख्याल करे, इंसान नहीं होगा तो ये हालात इसी तरह से रहेंगे। दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये ऐज़ान मोहतरम आशूरा के अंदर जो स्पिरिट है, जो हमको बताती है कि मकतब क्या है, तशय्यो क्या है, वो ये चीज़ें हैं। जो स्लोगन दिया इबा का, इबा किसे कहते हैं? इनकार, कि हुसैन जैसा यजीद के जैसे जैसे कि हाथ पे बैत नहीं कर सकता, आखिर वक्त तक नहीं। किसी भी तरह से इमाम अलैहिस्सलाम ने पीछे हट कहा कि अगर कोई भी मेरा साथ नहीं देगा, किसी ने मुझे पनाह नहीं दी, तब भी मैं यजीद के हाथ पे बैत नहीं करूँगा, मैं इस चीज़ पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये है मकतब इबा, इनकार नहीं, जिल्लत का सौदा हम नहीं कर सकते। अब इस के चीज़ के अंदर जो है हमको कुर्बानी देना पड़े, कुर्बानी कबूल कर लेंगे कि जब वो कहा कि जब इन्नत दई इब्नत दई, उसने काम किया है कि ख़त खींच दिया है, या तो जिल्लत को कबूल कर लो, या फिर अगर इस तरफ आना चाहते हो तो यहाँ पे कत्ल है, यहाँ पे शहादत है, तो हम लोग किस किस को इंतखाब करेंगे? हम कहेंगे हम शहादत का इंतखाब करते हैं, हम कुर्बानी को कबूल करेंगे, हम इस जिल्लत के रास्ते को कबूल नहीं कर सकते। ये मकतब है आशूरा, ये मकतब तशय्यो। इस पार्टी के अंदर अगर हम आना चाहते हैं तो इसके मैनिफेस्टो को फॉलो करना होगा। नाम से कुछ नहीं होता, नाम से कुछ नहीं होता। मैं अपना नाम हज़ार लिखता रहूँ कि मैं शिया हूँ, लेकिन हमारे अंदर जब वो चीज़ ना हो, जब शियत के अहम तरीन उसूल हमारी ज़िंदगी के अंदर ना पाए जाते हों, हम क्या करें? इसी इस वक्त हम लोग जाके उठ के जो है वो मैदान में निकल रहे हैं इसी तरह से? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने जब आशूर के वाक़े के बाद किस तरह से काम किया? नहीं, आहिस्ता आहिस्ता अफराद इस पैगाम को पहुँचाया। इस पैगाम को पहुँचाने की ज़रूरत है कि दीन वाकई ये है, निज़ाम इमामत ये है। अगर निज़ाम इमामत नहीं होगा, इसी तरह से आलम इस्लाम ज़िल्लत का सामना करता रहेगा। निज़ाम इमामत के तहत आ जाओगे, कुरान और सुन्नत की इस निज़ाम के अंदर जो है वो बालादस्ती होगी, हालात तब्दील हो जाएंगे। आओ, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, कुरान और सुन्नत को समझने की ज़रूरत है, सियासत इलाही को समझने की ज़रूरत है। इस निज़ाम की तरफ लोगों को दावत, पहले खुद समझें। पहले तो सबसे पहला मरहला कि खुद को समझ में आ जाए। अभी तो हमको खुद ही को समझ में नहीं आया, अभी तो हम खुद ही इसकी मुखालफत करते हैं। पहले हम समझें और फिर समझाया जाए। लोग आएंगे, उसका हुस्न देखेंगे। इमाम अलैहिस्सलाम के कितना खूबसूरत जुमला जिसमें फरमाते हैं कि लोगों को हमारी तरफ जब तुम किस चीज़ से दावत दो, हमारे उमूर को, हमारे जो अहकामात हैं, हमारी जो तालीमात हैं, लोगों को बताओ, ये खुद हमारे जो आशिक हो जाएंगे। हमने इस दीन को नहीं पहुंचाया सही तरह से लोगों तक। इस दीन को जब पहुंचाओगे, इसकी तालीमात को पहुंचाओगे, जब सीरे आयमा को पहुंचाओगे, जब लोग देखेंगे अली की हुकूमत, यानी ये जब मालिक अश्तर के नाम जो आपने नामा लिखा है, जिसके अंदर हुकूमतदारी को बताया कि हुकूमत इस तरह से होती है, लोग कहेंगे अच्छा दीन इस्लाम के अंदर ये है दीन इस्लाम, इतना खूबसूरत है, तो लोग खुद ब खुद मायल होंगे, खुद ब खुद हमारे इस दीन की तरफ आएंगे। लेकिन हमने कोताही की है इसके अंदर, ना खुद दीन को सही तरह से समझा, ना सिस्टम को समझा, ना लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। तो ईज़ान मोहतरम, ये एक बस इस आयत की तलावत है, उसके बाद जो है अपनी इस मतलब को जो है इख्तिताम पहुंचाता हूँ। इशाद होता है कि कद कानत लकुम उसवतुन हसना फ़ी इब्राहिम वल्लज़ीना माअहू, तुम्हारे लिए जो है इब्राहिम के अंदर एक उसवा हसना है। अगर तुम अपने लिए आइडियल देखना चाहते हो, कौन किसको आइडियल बनाया? तुम्हारे लिए हम इब्राहिम को और वो जो इनके साथ थे, इब्राहिम और इब्राहिम के जो साथी थे, वो तुम्हारे लिए उसवा हसना है। क्यों? इब्राहिम ने ऐसा क्या काम किया कि जो हमारे लिए उसवा है? इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआ मिनकुम व मिम्मा तअबुदूना मिन दूनिल्लाह। ये लोग वाज़ह तौर पर, साफ शफाफ तौर पर कहते थे कि ये खत है, एक लाइन है कि जो हमारे और तुम्हारे दरमियान हमें जुदा कर रही है। हमारे अंदर मिक्सिंग नहीं है कि हमें पता ही ना हो हमारी आइडेंटिटी का, हमको मालूम। दोबारा से कहें, तशख्स आइडेंटिटी की तरफ, और अपने हुवियत को पहचाने के हम कौन हैं। कहा कहा कि तुम्हारे लिए इसलिए उसवा हैं इब्राहिम और उनके मानने वाले, उनके साथ देने वाले, कि उनके पास आइडेंटिटी क्राइसिस चीज नाम की कोई चीज नहीं थी, उनको पता था कि हम कौन हैं। कहा कि इसकाल उल कौम हिम इन्ना बुरा आओ मिनको, हम तुमसे बेजार हैं। किससे बेजार हैं? वो जो कि खुदा की इबादत नहीं करता, यानी खुदा को रब नहीं मानता, और खुदा के अलावा दूसरों की जो है फिरौन नमरूद की जो है परस्तिश और उसकी रुबूबियत और उसकी हुकूमत का कायल है। हम हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। हम इस दुनिया के अंदर निज़ाम इलाही के मानने वाले हैं, न फकत इबादात के अंदर बल्कि इस पूरी दुनिया के हर सिस्टम के अंदर निज़ाम इलाही के मानने वाले हैं। और तुम नमरूद और उसके मानने वाले हो। हमारे और तुम्हारे दरमियान क्या है? बरात है, हमारे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। कफर ना बिकुम, हम तुम्हारा इनकार करते हैं। व बदा बैनना व बैनकुम अल अदावतु वल बगदाउ अबदा, हमारे और तुम्हारे दरमियान जो दुश्मनी है वो अबदी है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। कहा कि देखो तुम्हारे लिए हमने इब्राहिम और उसके मानने वालों को उसवा बनाया है, इनको आइडियल बनाओ। अगर इनको आइडियल बनाएंगे तो खुद ब खुद क्या हो जाएगा? हमें भी यही करना होगा। हमें भी, हमारे लिए वाज होना चाहिए कि वो कौन सी लाइन्स हैं हमारे लिए जो खींच दी गई हैं, कि इसको तुम क्रॉस नहीं कर सकते। हाँ, तुम्हें इजाज़त नहीं है कि इन लाइन्स क्रॉस करो। हाँ, अगर क्रॉस करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन फिर ये ना कहना कि तुम्हारा उसवा जो है इब्राहिम और उसके मानने वाले, ठीक है उस तरफ चले जाओ। लेकिन अगर इब्राहिम और इब्राहिम के मानने वालों को, उनके साथियों को अपना उसवा बनाना चाहते हो, तो फिर ये तुम्हारे लिए है कि वाज़े तौर पर तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर नज़र आना चाहिए कि हमारा निज़ाम ज़िंदगी ये है, उनका निज़ाम ज़िंदगी वो है, और हम इस चीज़ के मानने वाले हैं, इस सिस्टम के मानने वाले हैं। ये अगर होगा तो हमें हमारी हुवियत, हमारी शनाख्त मिलेगी, हमारी आइडेंटिटी मिलेगी। फिर हमें पता चलेगा कि हम जो कहते हैं कि हम शिया हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम के शिया हैं, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शिया हैं, इसका मतलब क्या है। वइल्ला जिस तरह से बाकी पार्टीज़ के अंदर होता है कि अगर आप उसके मेंबर्स जो हैं उसकी बात को ना माने और उसकी पॉलिसीज़ को फॉलो ना करें तो पार्टी से इखराज कर दिया जाता है। खुदा ना करे, खुदा ना करे कि इमाम अलैहिस्सलाम जब उस लिस्ट को देखें कि मेरी पार्टी की लिस्ट ज़रा लेके आई जाए और उसके अंदर अफराद को देखा जाए, तो कहा जाए कि नहीं, इन इन अफराद का नाम इसमें से निकाल दिया जाए, ये तो हमारी पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करते। ये मकतब है, ये पार्टी है, ये हिजबुल्ला है, हिजबुल्ला भी इसी तरह से है। इसके अंदर अफराद को उसी पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। एक दुरूद भेजे मोहम्मद आले इन खतूत को, इन गाइडलाइंस को वाज़ह करने के लिए कितनी कुर्बानियाँ आइम अलैहिस्सलाम ने दिए ताकि ये चीज़ें वाज़े हो जाएं, ये चीज़ें मिक्सिंग मिक्स ना हो, पता ना चले कि हम कौन हैं और हमारे दुश्मन कौन हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, किसी भी कुर्बानी से जो है दरेग नहीं किया गया ताकि हकायक वाज़े हो जाएं, हकायक रोशन हो जाएं, और हर तरह की हुज्जत जो है हमारे लिए तमाम हो जाए, कि हम कोई बहाना ना बना सकें, कि हमको समझ में नहीं आया, हमें मालूम ना हो सका। नहीं, इस करबला के अंदर अजीब व गरीब किस्म की कुर्बानियां हैं। आपने असाब का कुछ तذکرہ सुना, बहुत ज़्यादा हमारे पास तफसीलात के साथ नहीं है तذکرے कि उस करबला के मैदान में वाकई क्या हुआ है। जो कुछ भी हमको मिलता है वही हमारे दिलों को तड़पा देने के लिए काफ़ी है। जो कुछ हमें मुख्तसर सी मालूमात उस करबला के वाक़े के अंदर, उस सुबह से लेके असर तक, असल इस मुख्तसर से अरसे के अंदर क्या गुजर गई, ये हम नहीं जान सकते। लेकिन वो जो इमाम जो पर्दे गैब के अंदर है, वो कहता है कि मैं रोज़ शब्स खून के आंसू रोता हूँ, खून के आंसू रोता हूँ, क्योंकि वो देख रहा है। बाज़ उलमा कहते हैं इमाम अलैहिस्सलाम को हर रोज़ 2 मरतबा पूरा वाक़या करबला दिखाया जाता है, जैसा कि हुआ, जैसा कि उसके तमाम तफसीलात के साथ, तमाम जुज़ियात के साथ। इमाम अलैहिस्सलाम 1400 साल से अगर इस वाक़े को अगर कोई शख्स रोज़ और शब देख रहा हो, उसके क्या है, क्या उसके दिल पर गुजर रही होगी, कितना मुंतज़िर होगा वो। और फिर हम अपने आप को देखें कि हम कितनी कोताही करते हैं, हमारी तरफ से कोताही नहीं। अगर हम थोड़ा सा ज़हमत करें, अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें कि थोड़ा सा ये अरसा कम हो जाए, इमाम का ज़ुहूर थोड़ा जल्दी हो जाए, क्या इमाम खुश नहीं होंगे हमसे? लेकिन अगर हम अपनी ज़िम्मेदारियों का अदा ना करें तो खुदा ना करे कि इमाम हमसे नाराज़ हों। उनके पास वैसे ही मुसीबतें कम नहीं हैं कि हम उनकी मुसीबतों में इजाफ़ा करें, खुदा ना करे। तो इस करबला के मैदान में हमको जो अजीब व गरीब किस्म की कुर्बानी है, जिसको इंसान समझ में नहीं आता कि वाकई इस तरह से भी इंसान इतना मुखलिस, इतना फिदाकार हो सकता है। एक कुर्बानी इस करबला के मैदान में उस एक अजीम खातून की है, बीबी ज़ैनब कुबरा। अजीब कुर्बानी है इनकी, अजीब मकाम है, अजीब मंजिलत है, गरचे खातून हैं अपने उन तमाम अवातिफ के साथ, अपने उन तमाम जज्बात के साथ, अपने उस नरम दिल के साथ, लेकिन अपने कुर्बानियों को इस तरह से पेश किया है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप देखें करबला के वाक़े के अंदर हमको हज़रत अली अकबर का जंग में जाना, उनका शहीद होना, इमाम अलैहिस्सलाम का उनके जनाजे पर जाना, उनकी जनाजे को लेकर आना, तफसीलें मिलती हैं। हज़रत कासिम के मुकालेमात मिलते हैं, हज़रत कासिम ने यूँ कहा, इजाज़त मांगी, सब मिलता है। हज़रत मुस्लिम ने अकील की बात मिलती है, हज़रत अब्बास की बात मिलती है, और मोहम्मद का तस्करा कहीं मिलता है। मकातिल के अंदर, मोतबर मनाबे के अंदर हमें ये मिलता है, नाम मिल जाएगा आपको कि हाँ, औन जो के फ़र्जंद हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के, मोहम्मद जो के फ़र्जंद हैं अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार के, जो अपनी वालिदा के साथ करबला के मैदान में आए हैं। हमको ये मिल जाएगा कि हाँ, ये नौजवान थे, और जो गए हैं करबला के दिन, उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया, कुछ लोगों को उन्होंने वासिले जहन्नम किया और फिर शहीद हो गए। और इसके अलावा हमें मज़ीद तफसीलात नहीं मिलती कि ये आए हों बीबी ज़ैनब के पास और उन्होंने कुछ कहा हो, इमाम हुसैन के पास उन्होंने किस तरह से इजाज़त ली, ये तफसीलात हमें नहीं मिलती। जब ये वापस आए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इनके जनाजे पे जाके क्या किया, किस तरह उनको लेकर आए, कुछ नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर किसी ने इसको छुपाया है, जैसे जानबूझकर किसी ने इसको असल नज़रअंदाज किया है। हो सकता है ये बीबी ज़ैनब की बीबी ज़ैनब ही की ख्वाहिश हो कि मेरे बच्चों की बात ना की जाए, ये तो कुर्बान होने के लिए आए हैं, क्या इसका तस्करा, कितनी बड़ी, कितना बड़ा जिगर है। असल ऐसा लगता है बीबी ज़ैनब को अहमियत ही नहीं दे रही अपने बच्चों को, माँ है, कह रही नहीं मेरा भाई है, तुमको उन पर कुर्बान होना है, ये तो तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन जब अकबर का तस्करा आता है तो भाई के बेटा है, किस तरह से बीबी ज़ैनब जाती है, अपने आप को गिरा देती है। जब कासिम की बात आती है, जब अली असगर की बात आती है, अब्बास की बात आती है, लेकिन औन मोहम्मद का क्यों कुछ नज़र नहीं आता? बाज़ लोग कहते हैं कि शायद बीबी ज़ैनब इस तरह से नज़रअंदाज करना चाहती हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मोहम्मद का लाशर लेके वापस आए हों, तो ऐसा ना हो कि इनकी नज़रें जब बीबी ज़ैनब पे पड़ें तो बीबी ज़ैनब को देख के शर्मिंदगी के आसार उनके चेहरे पर आ जाए। बीबी ज़ैनब नहीं चाहती कि मेरा भाई मुझे देख के शर्मिंदा हो, इतना भी गवारा नहीं है इस बहन को, कितनी मोहब्बत है इस बहन को अपने भाई से, अजीब है, कितनी मोहब्बत है इस बहन को। वाकई कर आशूर के दिन जब से ये वाकया शुरू हुआ होगा, जब से वो पहला तीर चला हुआ होगा, इस ज़ैनब के दिल पर क्या गुजरी होगी, अब सोचती होगी बस अब वो वक्त नज़दीक आने वाला है, अब भाई से जुदाई का वक्त नज़दीक आने वाला है। और जब वो रुख्सत का वक्त आया होगा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब आए होंगे आखिरी रुख्सत के लिए, नहीं मालूम बीबी ज़ैनब ने किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ निगाह की होगी कि अब ये भाई जो जा रहा है ठीक है, अब वापस नहीं आएगा। और इमाम हुसैन ने किस तरह से ज़ैनब को देखा होगा कि कुछ ही देर के बाद इसके हाथों में रस्सियां बांध दी जाएंगी, चादरें छीन ली जाएंगी, नहीं मालूम ये बहन और भाई की रुख्सत किस तरह से अंजाम पाई होगी। अजीब दिल है बीबी ज़ैनब का। जब उस शब शाम गरीबा, जब आप नमाज शब के लिए खड़ी हुई होंगी, मुमकिन है किसी ने सवाल किया हो, ए बीबी आज की रात भी आप नमाज शब पढ़ेंगी? आज की रात इतनी थकी हुई, जिसके 18 लोग जो है इस घर वाले शहीद कर दिए जाएं, जिनके बेटों को शहीद कर दिया जाए, जिसकी माँ के बेटों को शहीद कर दिया जाए, भाइयों को शहीद कर दिया जाए, जिसके खैमों में आग लगा दी जाए, उस खैमों से बच्चे फरार कर जाएं और बीबी एक एक के पीछे भागती रहे और थक जाए, कहाँ कहाँ जाए, लेकिन आज भी आपके नमाज शब पढ़ेंगी तो शायद ये कहा हो, देखो मेरे भाई ने जाते वक्त कहा था बीबी ऐसा है ना, मुझे अपने नमाज शब में फरामोश ना करना, मैं कैसे हो सकता है कि अपने भाई के लिए। आखिर दावर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ए खुदा हमारी इस कली इस इबादत को कबूल फरमा, ए खुदा इस जैनबी किरदार को हमारी जिंदगी में अपनाने की तौफीक अता फरमा। ए खुदा, जिस तरह से असहाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मारिफत थी और उन्होंने अपना सब कुछ इमाम पर कुर्बान किया, हमें भी अपना सब कुछ इस दीन पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। ए खुदा, हम अपने वज़ाइफ को बेहतरीन तरह से समझने, उसको अदा करने की तौफीक अता फरमा। ए खुदा, इस मिल्लत के तमाम मसाइल को इंशाल्लाह बेहतरीन तरह से हल फरमा। ए खुदा, हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने की तौफीक अता फरमा, अपनी आखिरी हुज्जत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, और हमें उनके ज़ुहूर का ज़मीना फराहम करने की तौफीक अता फरमा। मातम हुसैन।